તારીખ 14/7/1993 શ્રી સમયસર કથા 201 અને 203 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 66
અપને પરિણામે અને વાલે રાગ કો ચાહે શુભ રાગ હો શુભ રાગ કો તો કોઈ અચ્છા નહીં જાનતા લેકિન શુભ રાગ કો सभी संप्रदायों में अच्छा जानने में आया है। कोई भी जीव हो, भले ही वो जैन हो, सभी शास्त्र पर डाला हो, व्यवहार चारित्र में पंच महाव्रत समिति मुक्ति 18 लंबे दिनों पर होकर के जंगलवासी हुआ हो, सब आ जाता है। वो अपना शुभ राग को थोड़ा भी अच्छा जानता है, उसके किसी एक विभाग को भी एक अंश को भी अच्छा जानता है, तो ऐसा समझ लेना कि उसने अपना आत्मा का स्वरूप नहीं जाना है। ऐसा क्यों कहा कि आत्मा का जो परमात्म स्वरूप मैंने मूल स्वरूप है वो तो राग रहित वितराग परम पवित्र इसकी बराबरी में राग का कोई भी अंश मलिन ही है, दुख रूप ही है और आत्मस्वरूप से विरुद्ध है। बहुत गाथा मैंने तीनों बताते हैं, मलिनता, दुख रूपता और अपने स्वभाव से विरुद्धता। ऐसा होने से उन्हें अपना आत्मस्वरूप जाना ही नहीं। जिसने आत्मस्वरूप को जाना है वो उसके विरुद्ध स्वभाव वाले को अच्छा जाने, ये बात संभव होती नहीं है। कर्मोदय जनित राग को ही अच्छा माना है और उससे ही अपना मोक्ष माना है। उन्हें कर्मोदय जनित राग को कर्म के उदय में जुड़ा होने से ये राग होता है, शुभ राग बोलो शुभ राग हो, कर्म के उदय के साथ आत्मा का परिणाम लगता है, जुड़ता है, तभी वो राग होता है। उसको अच्छा माना इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कल्याण का साधन माना, उसको धर्म माना, मोक्ष का साधन मान लिया है। इस प्रकार से अपना और पर का परमात्म स्वरूप नहीं जानता होने से वह जीव अजीव का परमात्म स्वरूप को भी जानता नहीं है। जो जीव अपना और पर का परमात्म मैंने वास्तविक स्वरूप नहीं जानता है वो तो अपना स्वरूप तो जीव का स्वरूप है, वो तो जीव का स्वरूप भी नहीं जानता और वो अजीव का स्वरूप भी नहीं जानता। और जहां जीव और अजीव दो पदार्थ को ही नहीं जानता है वो सम्यक दृष्टि कैसा, उसको धर्म का प्रारंभ का जो पहला गुण स्थान है चतुर्थ गुण स्थान कोई उसको नहीं है। तो कुछ भी शास्त्र कितना भी पढ़ा हो या दीक्षा भले ही ली हो लेकिन उसको धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई है। इसलिए रागी जीव सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं, रागी मैंने राग को भला जानने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं, ऐसा लेना।
द्रविड़ की शुद्धि निवास है
जी,
द्रविड़ की शुद्धि निवास है,
द्रविड़ की शुद्धि निवास है।
પછી ગોચા તો હોય કે સમ્યક દ્રષ્ટિ નો થયો હોય, સમ્યક સમ્યક સન્મુખ હોય તો પણ
સમ્યક સન્મુખ હોય રાગ ને ભલો જાણતો નથી, એમાં એટલો ફેર પડે છે, એનો વર્ગ જુદો છે। સમ્યક સન્મુખ ભલે ઈ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ ફિર ભી ઉસકા વર્ગ કોઈ અલગ હૈ, ઉસકો ક્લાસિફાઈ કર દિયા હૈ। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, फिर भी सम्यक तो सन्मुख है, वो अल्प काल में सम्यक दर्शन पाने वाला है, वो सम्यक दर्शन के बहुत समीप वाले भाव में वर्तता है, इसलिए इनका विपर्यास काफी मिट गया है, बहुत मात्रा में उसका विपर्यास छूट गया है, अभी एकत्व रहा है बहुत, वो भी बहुत कम बतला रहा है और वो छूटने की तैयारी में है, इसलिए वो ऐसे शुद्ध राग को बना जानता नहीं है, नहीं जानता, इसका यही कारण है, सिर्फ विकल्प ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, उनको भीतर में वेद ज्ञान चालू है, जिस वेद ज्ञान के फलस्वरूप उनको शुद्ध भी उत्पन्न हो जाएगा, वो वेद ज्ञान में क्या हो रहा है कि उस वेद ज्ञान में ज्ञान के वेदन पूर्वक उनको राग का निषेध हो रहा है, तो जो जिसको निषेध वास्तव में हो ही रहा है वो उनको अच्छा जानता है, वो बात कर रहे तो वो अच्छा नहीं जानता है, वो कहना इसलिए ठीक है कि उनको निषेध चालू हो गया है, राग का वास्तव में निषेध चालू हो गया है, और कैसा राग का निषेध कि जिसमें अपना आत्मस्वरूप का चिंतन चलता हो, ऐसा सूक्ष्म राग जो है, एक हूं अभेद हूं दो हूं, इसका भी निषेध उसको चलता है, इसलिए वो राग को भला जानता है, तो उसको लागू पड़ता
उनका भाव असल हो गया,
स्वरूप का भाव वासन है, स्वरूप का आदर है और राग का निषेध है, विधि निषेध दोनों चलता है, पर उसके फल में तो शुद्धोपयोग होने वाला है, इसलिए उनको सम्यक प्रसन्न कहने में आता
है, यानी यानी ये तो भाव ये जो साथ करने वाले से गलत है,
हाँ तो पढ़ाई पुण्य का निषेध स्वरूप के आदर के साथ होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, पुण्य का निषेध हो जाएगा और पाप का आदर हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे तर्क करेंगे कि जहां तक हमको स्वभाव का आदर नहीं वर्तता है पर पाप भी बहुत होता है, पुण्य भी होता है, हम पाप का निषेध करके पुण्य का आदर करें तो क्या तकलीफ है, क्या क्या बराबर, कौन सी बात बराबर नहीं है, पुण्य का आदर करने लायक नहीं है, यथार्थ प्रकार से उतनी बात है, यथार्थ प्रकार से अनादर पुण्य का नहीं हो तो आदर कर ले गए वो बात थोड़ी यथार्थ है क्या, ये बात तो अर्थार्थ है ही नहीं, नहीं होने तो यथार्थ होने का हमारा प्रयास चलना चाहिए, लेकिन हम उल्टा चल जाए तो बात तो करने लायक नहीं है, क्या बात है,
अंदर में इतना राग का सूक्ष्म राग का भी निषेध होता है तो बाहर में इतना तीव्र राग में सुख नहीं होता,
उसका भी निषेध चलता है, जब अंदर राग का भी निषेध चलता है तो तीव्र राग का स्थूल राग का तो निषेध चल ही नहीं चले, नहीं चले ऐसी बात हो ही नहीं
चलती, निषेध होता तो हम इसमें भूल जाएंगे,
निषेध होता है फिर भी भिन्न भिन्न एकत्व को छूट करके भिन्नता नहीं हुई है तो उसका जुड़ान नहीं चाहते हुए भी हो जाता है, क्या नहीं चाहते हुए भी हो जाता है, करने का उत्साह नहीं है, करने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन अपना इतना पुरुषार्थ नहीं है तो हो जाता है, तो बेबस हो जाता है, चाहते हैं और हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, तो संगीत दृष्टि को भी राग होता है, इसका मतलब ऐसा थोड़ा है वो राग को धरा नहीं जानता तो क्यों करता है, इनको भी हो जाता है, वो करता नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसी बात है,
अगर मुझे मंदिर में नहीं आना है तो मैं नहीं आती, मुझे नहीं आना है और मैं मंदिर में आ जाती, ऐसा कैसे
होता है, मंदिर आना और आने का भाव का साथ ही निषेध होना, ये दोनों बात बनती है बीच में, क्या है निषेध का जरा कौन सा निषेध भी जरा बढ़ेगा निषेध अगर अच्छा मंदिर में बहुत सारा पहले तो हम अपने अपने आप स्वरूप को समझे और समझते हैं उनको उसका आदर भाव उत्पन्न हो ऐसा होना चाहिए तो उसका निषेध यथार्थ रूप से स्वभाव का आएगा। आपके प्रश्न में बात इतनी आती है कि मंदिर आना केवल शुभ भाव है लेकिन सबों के लिए ऐसा नहीं है। क्या मंदिर में जिस भगवान की मूर्ति विराजमान की है तो आत्मस्वरूप की मूर्ति है। नाम हम देते हैं कि सुंदर स्वामी है कि महावीर स्वामी है इसे कोई भी नाम दे देते हैं कि शांतिनाथ भगवान है। वास्तव में वो हमारे आत्मस्वरूप की मूर्ति है। क्या है तो हम हमारे स्वरूप को अधिक समीप होकर के देखने वास्ते मंदिर आते हैं स्वीकार करने के लिए मंदिर क्या बात है। तो आपके प्रश्न को तो पहले फाइनलाइज करें कि आपके प्रश्न में तो इतनी बात है कि जैसे हम अकेले स्वभाव के लिए मंदिर आने आते हैं तो ये मंदिर काय को आना उसी को ही नहीं समझते। मंदिर आने के पीछे क्या परमार्थ है क्या रहस्य है क्या मर्म है उसको वो नहीं समझता तो वो तो रूढ़िगत रूप से आएगा। उनके लिए मंदिर बनाया भी नहीं है उनके लिए तो मंदिर नहीं बनाया में मंदिर तो बनाया भगवान का दर्शन तो करने लगे लेकिन कैसे करना वो बात आज तक नहीं जानते। पहले तो भगवान का दर्शन कैसे करना ये बात समझने के लिए या तो अभी विषयांतर हो जाएगा इसलिए इस बात का ज्यादा मैं विस्तार नहीं करूंगा लेकिन जिसको अच्छी तरह समझना हो तो गुरुदेव के अनुभव प्रकाश के प्रवचन जो है उसमें एक देव अधिकार लिखा है। क्या ग्रंथ बिल्कुल अध्यात्म का अनुभव का ग्रंथ है फिर भी दीपचंद जी साहब ने एक देव अधिकार करके छोटा सा प्रकरण लिखा है। उसका जो मुख्य बात है वो है कि वितराग देव को दर्शन करते वक्त तो अनंत स्वसंवेदन स्वरूप विराजमान है मौजूद अपने सामने तो हमको भी हमारा स्वसंवेदन का आविर्भाव होना चाहिए या स्मरण आना चाहिए और जहां भी दूसरा पदार्थ में भी तीव्र कोई परिणाम होते हैं तो देखने वाले को असर आए बिना नहीं रहती। दृष्टांत से देखें कि हम रास्ते में किसी एक प्राणी को चाहे कुत्ता हो गाय हो कोई भी प्राणी हो बहुत दुखी चिल्लाता हुआ देखें उसको कोई दर्द हो गया हो माथा पड़ गया हो और उसमें कीड़ा पड़ गया हो चिल्लाता हुआ देखो देखकर उससे क्या होगा समझ में थोड़ा दुख जाएगा तो देखने वाले को दुख हो जाता कोई सगा संबंधी नहीं है सगा संबंधी हो तो बहुत दुख हो जाए महत्व के कारण कुछ संबंध नहीं होने पर भी तीव्र दुख इनको देखकर अगर कुछ होता है तो तीव्र स्वसंवेदन अनंत स्वसंवेदन वाले को देखकर क्या स्वसंवेदन का हमको आविर्भाव नहीं होगा क्या। यही मकसद है मंदिर बनाने का इसके पीछे यही कोई रहस्य है उसी प्रकार का है। वैसा सिर्फ आना ऐसा करके चला जाना इसके लिए मंदिर नहीं बनाया। मंदिर तो इसलिए आते हैं हमारा स्वरूप को हमारा संवेदन को उजागर करने के लिए, जागृत करने के लिए, अभिभूत करने के लिए ये मंदिर का निमित्त है। केवल प्रभाव के लिए नहीं है। तो प्रश्न तो बराबर निकालना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कहां से कहीं कौन बात निकल जाएंगे क्या पता है, दर्शन किस तरह से करना है। तो वहां भाव का तो निषेध होगा, वहां भी क्या होगा कि जब स्वरूप का आदर होगा तो भाव का निषेध होगा, वहां भी ऐसा ही होगा। तो हमारे लिए तो कोई भी प्रसंग हो उदय का, क्या जिसको भेद ज्ञान करना है, स्वरूप का आदर करना है, रागादि का निषेध करना है, वो तो हर प्रसंग में वही करेगा। क्यों? उसका ज्ञान मौजूद है, राग होते रहता है। ज्ञान है तो आत्मा है, राग है तो अनात्मा है। एक के आदर में दुष्का दूसरे का अनादर है। अगर राग का आदर है तो ज्ञान का और आत्मा का अनादर है। राग का जिसको ज्ञान का आदर है उसमें राग का अनादर शैल है। एक के आदर में दूसरे का अनादर बिना विकल्प भी शैली होता है। तो ये बात का चालू रखना है।
शुभ ने अशुभ नो आदर ने निषेध करी सके छे के शुद्धता ना स्वरूप मां जाए तो एनी मेरे थाय छे।
तो पूरा के शाम होता है, ये तो कहा निषेध होता है। वो तो जो आदर करता है उसको उपदेश में ऐसा कहने में
आया है, तो
उसका निषेध करो, अनादर करो। देश का तो यही स्पीच जो है वो उसी ढंग का रहेगा, देश है, आदेश है, उसमें तो ऐसा करो ऐसा नहीं करो वही बात आएगा, तो ऐसा ही आएगा। लेकिन वो सहज होता है, ऐसा करना है तो सहज होता है।
महात्माओं ने दिन प्रतिमा दूरदर्शन में उनको आविर्भाव करने के लिए इच्छा की है।
हाँ बिल्कुल, यही कारण है। केवल सद्भाव करने के लिए स्थापित नहीं किया है, और स्वभाव करने का उद्देश्य भी भगवान का इनेन्द्र का है ही नहीं। जो विद्राग हुए हैं, जिसने राग को खत्म कर दिया, क्षय कर दिया, तो राग का उद्देश्य कैसे देंगे? राग का उद्देश्य उन्होंने दिया ही नहीं, खुद विद्राग है, राग का उद्देश्य कैसे देंगे? उन्होंने राग का उद्देश्य कभी दिया ही नहीं। उनका उद्देश्य जन्म में दर्शन करना है, तो हमें भी विद्रागता ही प्रकट करनी होगी और राग का निषेध करना ही होगा, तभी भी तरह का उत्तम होगी।
स्वरूप का आदर होता है, साथ साथ स्वभाव होता ही रहता है,
साथ साथ होता रहता है, तो परवस व्यवस्था से होता रहता है, रहता है अवश्य। लेकिन हम चाहते हैं ऐसी बात ना नहीं है, जैसे कि हमने अनाज प्राप्त करने के लिए बीज बोए खेतर में, हमारा जमीन हो उसमें बीज बोए, और उसमें अनाज भी होता है, और अनाज का ऐसे होता है कि पहले तो उनका जो खड़ है छोटा सा जो इतना निकलेगा, घास बनेगा उस पर लगेगा डूडी अनाज की, तो हम किसको खाएंगे, अनाज को खाएंगे या घास को भी साथ के साथ तो खा लेंगे? कि घास को तो काट करके फेंक देंगे, अगर खाएंगे तो कोई ऐसा कहेगा कि ये तो तिरिंद लोग खाते हैं, मनुष्य लोग तो खाते नहीं, आप तिरिंद बन गए क्या, ऐसा कहेंगे। तो ये तिरिंद को खाने लायक है, वो पुण्य अज्ञानियों को करने लायक है, ज्ञानियों को करने लायक नहीं होता। ये तो चलता है वो तो चलता है, ये दुख का बीज है, दुख का वृक्ष इसमें से फूलेगा फूलेगा, तुम उसकी तृष्णा को छोड़ो। सुबह सुबह रोज प्रवचन चल रहा है गुरुदेव का, प्रवचन सार में से। तो ऐसे अनाज के साथ सहज घास होता है, फिर भी मनुष्य है वो घास को खाते नहीं, उसको फेंक देते, क्योंकि उसके खाने लायक वो चीज नहीं है। होवे तो होवे, लेकिन हम उसको चाहते नहीं है। होगा
उसका
नहीं होगा वो बात नहीं है,
वजन देंगे तो पुण्य करना छोड़ देंगे,
पुण्य करना छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, ये बात पहली है। छोड़ना है वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है, क्या ऐसे नहीं छोड़ना है, पाप में चले जाए ऐसे पुण्य को नहीं छोड़ना है। तीन प्रकार के जीव के परिणाम होते हैं, पुण्य रूप, पाप रूप और वितरकता शुद्ध शुद्धता। तो पुण्य को छुड़ाते हैं श्री गुरु क्यों, हमेशा में भी ऐसा क्यों करते हैं कि जीव को वितरकता में शुद्ध भाव में ले जाना है, इसलिए छुड़ाते हैं। पाप करने के वास्ते तो नहीं छुड़ाते, तो कहने वाले का अभिप्राय तो हम पकड़े पहले, और जैसा वो कहे वैसा करे तो कोई आपत्ति नहीं, जैसा कहे ऐसा तो समझे नहीं और करे कुछ उल्टा तो अधिक नुकसान हो जाएगा, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये तो बराबर ध्यान से बराबर विचार करके सुन करके समझ करके फिर यथार्थ रूप से आगे बढ़ने की बात है। जीव को संसार से मुक्त कराने का तो ये शास्त्र आगम होते हैं, किस तरह से मुक्त होता है वही देखना है।
यत्न करने में गुरु की आज्ञा सर्व समय तक का आविर्भाव करने की है, किंतु व्यवस्था नहीं करते हैं तो गुरु की आज्ञा का आवरण नहीं करते हैं,
आज्ञा को तो उल्लंघन करते हैं, अनादर करते हैं, उल्लंघन करते हैं, इसके बजाय अनादर करते हैं, आदर नहीं करते हैं, जाते हैं मंदिर और गुरु आज्ञा का अनादर करते हैं, अपराध है। क्या है ये अपराध है, ऐसा अपराध करना नहीं चाहिए।
तो थोड़ा हुआ धर्म में बढ़ना है
और बढ़ जाएगा। मैं मंदिर गया, भगवान को वंदन पूजन नमस्कार आदि किया तो मुझे लाभ कुछ न कुछ होगा, लाभ होगा कि दर्शन को मिथ्या तब तीव्र होने का नुकसान हो जाएगा।
अगर ऐसा नहीं सोचे कि मुझे लाभ होगा तो भी दर्शन में तीव्र होगा,
लाभ नहीं होगा लेकिन जिस अभिप्राय से जिस उद्देश्य से हम मंदिर जाते हैं मुझे तो लाभ होगा, परिणाम तो कुछ न कुछ होगा, बिना परिणाम तो जीव रहता नहीं कभी, तो कौन से परिणाम हुए हैं। तो भगवान का दर्शन करने लगे तो कौन से परिणाम हमारे हुए हैं ये हमको समझना है। जब भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप तो दिखता है, इसमें तो क्या देखता है, उसमें कोई स्वभाव करने की बात तो देखता है क्या, है मेरे में भगवान में स्वभाव है, मेरा दर्शन में तुझे स्वभाव करने के बाद कैसे आती है, कैसे सीखता हूं कैसे समझता हूं, हमको आश्चर्य लगता है। जैसे कोई हमारे दुकान पर आए, आपका इलेक्ट्रॉनिक का है और बोले कि हमको 2 रुपया का सब्जी दे दो, क्या मिले कि हमको भाजी लेना है, आप कहेंगे भाई भाजी वाले का ये दुकान नहीं है, अगर भाजी नहीं तो भुजिया दे दो, क्योंकि भाजी में नहीं मिलेगी और भुजिया भी इधर नहीं मिलेगा, हमारे दुकान में वो चीज ही नहीं है। ऐसे वितराग के मंदिर में राग है ही नहीं, इनकी दुकान में वो चीज बिकती नहीं मिलती नहीं, हम तो उठाओ भी रहे दूसरी जगह से उठाओ उठा लेते हैं शिवराग को, ऐसी बात हो गई। ऐसी ये दूसरी वितराग की दुकान है, वितराग का मंदिर है वो, वितराग की दुकान है, तुम्हें स्वभाव करना है तो जगत में बहुत मंदिर पड़े तिरुपति जैसे बड़े बड़े चले जाना अन्य मत में, अगर तुझे स्वभाव ही करना है तो स्वभाव के लिए तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बहुत है, लोग जाते हैं वहां, वितराग के मंदिर में शुभरा करने की बात है ही नहीं, ऐसी बात है।
मंदिर आए और सद्भाव की भावना ना हो
ना।
तो समझ ही लेना कि वो सुधरा की भावना होगी।
अगर
अच्छी बात, उसी की बात है, अगर धर्म मुख ऐसे करते हैं ठीक बात है।
सत्कार करने योग्य है, आदर करने योग्य है,
तो संकित हो जाएगा ना भाव से।
अभी थोड़ा समय अपने पास मर्यादित है, इसलिए कल 203 नंबर की गाथा लेंगे। अब पूछते हैं कि ये गुरुदेव यह पद कैसा है, क्या पूछा शिष्य ने, क्या पूछा? तो भाव बीच में आ जाएगा, उठता ही रहेगा, करना ही पड़ेगा, इसको क्यों छोड़े, ऐसा बात नहीं पूछा। ये समस्या सुनने वाला शिष्य ऐसा होता है, आत्मस्वरूप कैसा है, आत्मस्वरूप को मैं कैसे अनुभव करूं, आप उसको दिखाइए, उसका अनुभव करने का पद्धति दिखाइए, ये विधि दिखाइए हमको, हमको यही विधि देखना है, स्वभाव की विधि हमको देखना नहीं है। प्रश्न ऐसा निकलता है, आदम में तत्व भावे अपने भूतम जो भिन्न सरल नियतम क्षीरम एकम इमम भावम उपलब्धम सहाव
जीवन शरीर नहीं होता उसको मुर्दा बोला जाता है, वास्तव में शरीर सजीवन नहीं है, तो सजीवन मूर्ति जो आत्मा है उसका उसे संयोग है बगल में, शरीर कभी सजीवन हो सकता नहीं है, वो तो मुर्दा ही मुर्दा रहता है, संयोग है तब भी मुर्दा है और जीव का वियोग हो जाए तब भी मुर्दा ही मुर्दा है, क्योंकि उसमें जीवन हो सकता नहीं है कभी। इसलिए वो द्रव्य जो पुद्गल द्रव्य है, अनात्म द्रव्य है, और भाव मैंने सुभाष्म भाव जो अनात्म भाव है उसको छोड़ करके, उसको छोड़ करके मतलब उसमें अपनत्व छोड़ करके, वैसे तो वो जो है सो है, लेकिन भ्रांति से इस जीव अपनत्व कर लेता है तो उसको ग्रहण किया, ऐसा कहने में आया है, ग्रहण नहीं होते हुए भी उसको छोड़ करके निश्चित निश्चित मैंने नियत नियत मैंने जिसमें कभी फेरफार नहीं होता है ऐसा एक रूप कोई काल में जिस स्वरूप में कोई फेरफार नहीं होता वैसा का वैसा रहता है ऐसा निश्चित और स्थिर मैंने चला है मान चंचल नहीं हो ऐसा स्थिर स्वभाव अविचलित स्वभाव जो कभी स्वभाव से च्युत नहीं होता है ऐसा जो स्वरूप है और एक है जिसमें भेद का द्वैत भी जिसमें नहीं है एक शब्द का भिन्न भिन्न आगम में भिन्न भिन्न भाव निकाले हैं आचार्यों ने और ज्ञानियों ने कहीं एक को शुद्ध कहते हैं 38 गाथा में एक शुद्ध सदा एक में ऐसा लिया है कि कहीं दो पड़ा नहीं है एक का शुद्ध भी होता है अभेद भी होता है अखंड भी होता है अद्वैत भी होता है ऐसे अनेक प्रकार के जो आत्मा के विशेषताएं हैं और एक शब्द के माध्यम से दर्शाने में आते हैं मैं एक हूं और इमम मैंने प्रत्यक्ष हूं ये बहुत बड़ी बात है मैं अपने स्वरूप से प्रत्यक्ष हूं उतना ही नहीं अनंत प्रत्यक्ष हूं कैसा हूं अनंत प्रत्यक्ष हूं सोनागिर में चला था अब थे सोनागिर में शिविर अपनी थी अभी चला तो वहां नियम सार के 11-12 गाथा दिया शिविर वहां जो बगल में अपना ग्वालियर सिटी है सोनागिर से 70-75 किलोमीटर पर ग्वालियर सिटी जो है वहां जो अपना मंडल है गुरुदेव के अनुयायी लोग जो है अध्यात्म प्रियता बहुत है उनको नियमसार बहुत बेचता है उनको पूछे के क्या स्वाध्याय करेंगे तो नियमसार की गाथा देंगे बहुत रुचि बहुत अच्छी रुचि रखते हैं तो नियमसार की 11-12 गाथा लिया है ऐसे दोनों गाथा साथ में है और दोनों गाथा में ज्ञान के भेद प्रभेद दर्शाए हैं मुख्य दया लेकिन साथ साथ आचार्य महाराज का जो कहने का अभिप्राय है वो ज्ञान के भेद प्रभेद को कहने का नहीं है तो 5 और 3 8 भेद कहे 5 सम्यक ज्ञान के और 3 मिथ्या ज्ञान के 8 भेद कह करके कहा कि किंतु एक जो नौवां सहज ज्ञान है क्या कहा एक नौवां भी ज्ञान है ये 8 है तो पर्याय का विषय है लेकिन नौवां जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप सहज ज्ञान है उसको कारण ज्ञान कहा वहां कौन सा कहा सहज कारण ज्ञान कहा वो कैसा है कि सहज प्रत्यक्ष है अनंत प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान में जो अनंत प्रत्यक्षता उत्पन्न होती है वो कहां से हुई भीतर में थी कोई बार आई है और भीतर में थी तो बार आई तो पर्याय अपेक्षा से अनंत प्रत्यक्षता होने पर भी द्रव्य में जो है स्वभाव में जो है वो तो उससे भी अनंत है किससे इससे भी अनंत है जो केवल ज्ञान में अनंत प्रत्यक्षता है इससे भी अनंत है ऐसा आत्मा केवल प्रत्यक्ष ज्ञान का पिंड है उसको हम परोक्षता में रख करके चिंतन करें मन के आश्रय से तो उसका लाभ होने वाला नहीं है अनुभव कब होता है वेद ज्ञान करने वाले स्वरूप सम्मुख मुमुक्षु आत्मा को अब इसको मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे स्वरूप सम्मुख मुमुक्षु आत्मा को स्वानुभव कब होता है वेद ज्ञान तो उसका चालू हो गया स्वरूप सम्मुखता में कब होता है कि उस वेद ज्ञान में इस प्रत्यक्ष स्वरूप का आधार और अवलंबन जब हो जाता है तब उसको परोक्षता विलीन हो करके विलय को प्राप्त हो करके उपयोग में भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। ये बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ के उत्पन्न होने का आधारभूत मुद्दा है। क्या आत्मा एक है, भेद है, ज्ञान स्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप है, ये सब होने पर भी इनके जो आधारभूत कोई लेने की चीज हो जहां से पुरुषार्थ का उछाल आता है एकदम, वो कोई चीज है तो ये स्वरूप में रही हुई स्वाभाविक अनंत प्रत्यक्षता है। पुरुषार्थ को एकदम तीव्र होने का एक मुद्दा है, उसका जब भेद ज्ञान में वेदन पूर्वक प्रत्यक्षता का अवलंबन आ जाता है उसी वक्त अनुभव बन जाता है। उसी वक्त इंद्रिय ज्ञान बंद हो करके अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, सहज रूप से हो जाती है, विकल्प भी नहीं हो जाता है ना उस प्रकार का। क्यों? विकल्प तो उस चीज का रहता है कि जो मौजूद नहीं हो सामने, सामने मौजूद नहीं हो उसका विचार विकल्प चलता है। जैसे आप और हम सामने सामने हैं तो मैं आपका विचार विकल्प क्यों करूंगा, आप तो सामने देखता हूं मैं तो, आप बैठे हैं मेरे सामने, तो वहां देखना होता है, वहां अवलोकन होता है, वहां विचार नहीं होता है। सामने चीज होती है तो देखने की होती है, अवलोकन की होती है, विचार की नहीं होती है। जो चीज परोक्ष होती है, जो उपस्थित नहीं होती है, उसका विचार विकल्प स्मरण आदि चलता है। तो यहां आत्मा स्वरूप से प्रत्यक्ष है, ये मुद्दा आया है। समय सार में यह बात बहुत जल्दी आती है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पीछे तो उसमें इतना स्मरण तो मेरा नहीं है, याददाश्त थोड़ी मेरी तो कमजोर है, लेकिन तोतेर गाथा में वो बात है, तोतेर गाथा देखिए। एक की व्याख्या में ये भाव निकलता है, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष, क्या शब्द लिया है पहली पंक्ति, तोतेर गाथा की टीका की पहली पंक्ति है कि मैं यह आत्मा, आत्मा माने डैश जो किया है किस किसी ने किया, अर्थात आत्मा अर्थात कि प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति, दूसरा डैश ले लिया। आत्मा का यही भाव है कि प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति, उसी को ही हम आत्मा कहते हैं। आत्मा मैंने कोई साधारण चीज नहीं है, एक परम पद है, परम तत्व है, जो हमेशा हमेशा अपने स्वरूप से अनंत प्रत्यक्ष ही रहता है। उसको परोक्ष करना चाहे तो भी उसमें परोक्षता आ सकती नहीं है, प्रत्यक्ष के ही चले। और बहुत जगह है प्रत्यक्ष में, और टीकाकार जो राजमल जी है कलश टीका, उनको बहुत लेते हैं, तो बहुत लेते क्योंकि अध्यात्म प्रधान सा ज्यादा लिया है कलश, तो बहुत महत्व आता है। यहां भी कांस में यह लिखा है एक के भाव में कि यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर भाव को कि जो आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव में आते हैं, क्या आत्मा के स्वभाव रूप से स्मरण में आते हैं? नहीं, विकल्प में आते हैं? नहीं, अनुभव में आते हैं, ऐसा कहते हैं। उसको ही भव्य जैसा है वैसा, अभी देखो कोई विशेषण नहीं लगाया, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, एक स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, कुछ नहीं लगाया, जैसा है वैसा। क्यों? कि एक विशेषण लगाने से दूसरी अनंत विशेषताएं जो है वो कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बोलने में तो एक ही विशेषता आती है। इसलिए ज्ञान में पूरा का पूरा आया तो जैसा है वैसा कहा, भाषा में ऐसा कहा गया जैसा है वैसा, क्योंकि ज्ञान में पूरा है और पूरा में सभी विशेषताएं उसकी समाविष्ट है। उसको भव्य जैसा है वैसा ही ग्रहण कर, वो जैसा है वैसा ही ग्रहण कर, मैंने स्वरूप रूप अनुभव कर, उसका अनुमन ले, उसका आधार ले, और विकल्पों का और शुद्ध भावों का आधार छोड़ दे। वो तेरे आधार लेने वाला एक चीज नहीं है, पुण्य है, शुभ भाव है, वो आधार लेने लायक चीज नहीं है, इसके फल है वो भी आधार लेने लायक नहीं है। जहां तक इसकी आधार बुद्धि रहेगी वहां तक मिथ्या पर जाने वाला नहीं है, एकत्र छूटने वाला नहीं है। सुख बुद्धि, आधार बुद्धि और एकत्व बुद्धि, ये तीनों छूटनी चाहिए, और ये तीनों छुड़ाने के लिए सारा संसार है, ऐसा समझना। हम टीका कहते हैं कि खरेखर यह भगवान आत्मा, उसमें बहुत द्रव्य भावों के मध्य में, मैंने द्रव्य भाव रूप अनेक द्रव्य भाव के मध्य में जो एतत् स्वभाव अनुभव में, अर्थात एक आत्मा के स्वभाव रूपे नहीं परंतु पर स्वभाव रूपे अनुभवाते हैं, एतत् स्वभाव में अनुभवाता है, अनित्य अवस्था वाला है, अनेक है, क्षणिक है और व्यभिचारी भाव है, वो सब व सभी स्वयं अस्थाई होने हैं, स्थाता का स्थान यानी रहने वाले का रहठान नहीं होने होने शक्य, होने के शक्य ही नहीं हो सकता ही नहीं, ऐसा होने से, अशक्य के योग्य होने से अपदभूत है। वो क्यों अपदभूत है? कि वहां आत्मा रह सकता नहीं। मकान में आत्मा रह सकता है? अगर मकान में रह सकता है तो जिस मकान को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं उसको छोड़ना पड़ता है। शरीर में आत्मा रहने लायक चीज है, अगर रहने लायक होती तो उस शरीर छूटता नहीं। और समझो कि कोई ऐसा भाव है कि हमको उसमें ही रहना है, बहुत आनंद आता है, मान कि हमें किसी एक भाव में बहुत आनंद आता है, तो उस भाव में हम क्यों नहीं टिक सकते, दूसरे भाव में क्यों चले जाते हैं? हम चाहते ही नहीं जाना। जैसे हम आम रस खाते हैं, किसी को बहुत पसंद भी होता है, तो जिसको बहुत पसंद हुए वो ऐसा विचार करे कि इस आम रस को मुंह में ही रखें, जैसे वो पान रखते हैं, दो घंटे चार घंटे तक पान को रखते हैं लोग, पान खाने वाले, ऐसे आम रस को रख ले तो रहेगा नहीं, पान भी नहीं रहेगा, कोई चीज नहीं रहेगी, हमेश के लिए कोई चीज रहने वाली नहीं है। ऐसा क्यों? थोड़ा गहराई से विचार करना है, ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा है कि वहां आत्मा रह सकता ही नहीं, रहना चाहे तो भी, ये जो कोशिश करता है कि मैं इसमें रहूं, मुझे अच्छा लगता है, तो उसकी कोशिश सफल होती नहीं है, आखिर में वो निष्फल हो जाती है। यही कारण है कि ये वास्तविक आत्मा के रहने का है, भाव भी नहीं और द्रव्य भी नहीं, दोनों नहीं, दोनों में से एक भी नहीं हो, ये द्रव्य भाव है ही नहीं इनका। फिर से खरेखर मैंने वास्तव में, खरेखर का मतलब क्या है, वास्तव में कल ही चर्चा में वो बात चली थी कि ये जो वितराग कथित जो भी सब बातें हैं, चाहे वस्तु के स्वरूप की हो, चाहे इसके वितराग मार्ग की हो, उपाय की हो, इलाज की हो, सभी वास्तविक परिस्थिति की बात है, कहीं भी कल्पना को जोड़ना नहीं है, कहीं कल्पित बात नहीं है, बहुत ठोस एकदम वास्तविक, मार्ग भी वास्तविक, वास्तविक वस्तु का स्वरूप भी वास्तविक, वास्तविकता के आधार पर कही गई ये सब बातें हैं, कहीं भी कल्पना नहीं चलेगी। इसलिए बहुत इस उस मुद्दे को देखना है तो जरा ध्यान से लक्ष्य देकर देखें तो वास्तविकता बहुत मालूम पड़ेगी उसमें। खरेखर मैंने वास्तव में यह भगवान आत्मा में बहु द्रव भाव मध्य, मैंने संयोग में अनेक प्रकार के पदार्थ भी हैं और हमारे परिणाम में भी विध विध प्रकार के भाव भी होते रहते हैं, पुण्य के और पाप के दोनों प्रकार के अनेक अनेक विध विध भाव होते रहते हैं। उसके मध्य में मैंने उसके संयोग में भी वो कैसे हैं दोनों, जो असत स्वभाव से अनुभव में आता है, असत मैंने क्या, मैं नहीं उसको असत कहते हैं, तत्व को तत्त पढ़ा मैंने, तत्व मेरा तत्व नहीं है, जो अपना आत्म तत्व है ऐसा उसमें नहीं है, इसलिए उसको एतत ऐसा कहने में आया है। तत्व शब्द में मूल शब्द तत्व है और त्व लगा है वो पणा, तत्पणा ते पणा, आत्मा में आत्मपणा है उसको आत्मत्व कहते हैं, आत्मा में आत्मपणा है उसको क्या कहते हैं, आत्मत्व कहते हैं, उसी को तत्व कहते हैं, ते पणा। नव तत्व में कहा है तो पुण्य में पुण्यपणा है वो पुण्य तत्व है, मोक्ष में मोक्षपणा है वो मोक्ष तत्व है, अजीव में अजीवपणा है वो अजीव तत्व है, ते पणा उस पणा। ऐसे मेरे हिसाब से वो असत स्वभाव है, मेरे स्वभाव के हिसाब से वो असत स्वभाव है, मेरा स्वभाव पुण्य पाप में नहीं, मेरा स्वभाव पुद्गल में भी नहीं, अजीव तत्व में नहीं, क्योंकि मैं जीव स्वभाव हूं। तो जीव स्वभाव से पुण्य पाप भी विरुद्ध है और पुद्गल भी विरुद्ध है, अजीब है, इसलिए वो असत स्वभाव है। और असत स्वभाव है ऐसा हम जानते हैं, ऐसा नहीं यहां कहते, क्या क्या शब्द प्रयोग किया है यहां, वेदन की बात किया है, वेदन की बात किया है, जानने की बात नहीं की, क्यों कि पढ़ करके जान लेते हैं, पढ़ करके क्या करते हैं, बराबर समाचार में ऐसा ही लिखा है, जानते हैं हम, पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार गुरुदेव से सुना भी है। अब वो बात नहीं, अब कहते हैं कि वेदन में आया तो अनुभव में आया, वो बात बराबर है, बाकी जानने वाली बात में कोई दम नहीं। जो असत स्वभाव से अनुभवाता है वेदन में, उसको स्वभाव रूप से वेदन में वो आ सकते ही नहीं, स्वभाव रूप नहीं होने से वो स्वभाव रूप वेदन में आ सकते ही नहीं। क्या है ज्ञान की पर्याय में ये दो भाव अलग अलग प्रकार के हैं, दोनों ज्ञान के भाव, जानने में स्वपर प्रकाशकपणा होने से फल को जानना होता है, लेकिन वेदन में वो संभवित नहीं। स्वपर वेदक नहीं है आत्मा, स्वपर नायक है। स्वपर प्रकाशक होने से उसको स्वपर नायकता सिद्ध होती है, लेकिन स्वपर वेदकता सिद्ध नहीं होती। तो दूसरे को वेद ही नहीं सकता, अपने स्वभाव के अलावा अपने स्वरूप को छोड़ करके दूसरों को भोग नहीं सकता, वेदन नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता। तीनों एक आप है, वेदन करना, अनुभव करना और भोगना, तीनों एक ही भाव के कहने वाले ये तीन शब्द है। तो तीनों में एक ही बात है कि हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि वो तत् स्वभाव से अनुभव में आता है। जब मैं अनुभव को देखता हूं तो वो अनुभव में आते ही नहीं। इसलिए किसी भी संसारी जीव को किसी भी पदार्थ को भोगने में अतृप्ति रहने का यही कारण है। तृप्त क्यों नहीं होते? संसार के पदार्थ सभी मिलने पर तृप्त तो नहीं होते, लेकिन तृप्त होने के लिए जो भी उनकी क्रियाएं परिणाम चलते हैं उसमें अतृप्ति बढ़ जाती है, यही हालत होती है। वरना तो क्या होता? तो चलो अभी पानी पिया तो तृषा की तृप्ति हुई कि नहीं हुई? कि नहीं हुई। क्यों? कि पानी के परमाणु आत्मा में आए नहीं, आत्मा को स्पर्श भी हुआ नहीं, पानी के परमाणु का आत्मा को स्पर्श भी नहीं हुआ। इसलिए पानी एक जगह से दूसरी जगह आया, गिलास में से होजरी में गया, स्थानांतर हुआ अवश्य, लेकिन आत्मा में नहीं गया, पानी पानी में ही रहा है, पानी आत्मा रूप हुआ नहीं है। इसलिए आत्मा को किसी भी पदार्थ से तृप्त होने का बन ही नहीं सकता, अतृप्त ही रहता है। पर पदार्थ से कोई तृप्त होना चाहे तो वो अतृप्त ही रहता है, कोई तृप्त हो सकता नहीं है। इसलिए फिर क्या है कि तृप्ति कहां से होती है उसका पता नहीं है, इसलिए फिर एक विषय को छोड़ देता है, दूसरों को ग्रहण करने को जाता है, वहां तृप्त नहीं होता है, तीसरे में जाता है, वहां तृप्त नहीं होता है, और एक विषय को पकड़ता है, कहीं भी तृप्त नहीं होता है। आखिर में क्या होता है कि उसकी जो शांति है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, अशांति बढ़ जाती है। और जो धनाढ्य प्रदेश है, हमारे पाश्चात्य देश है, वेस्टर्न कंट्रीज, उसमें वो बात साबित नहीं करनी पड़ती है कि वहां अशांति बड़ी है, पैसा बहुत बड़ा है, ऑटोमाइजेशन वहां बहुत बड़ा है। इधर जो ऑटोमाइजेशन आता है वहां से ही आता है, जापान से, जर्मनी से, अमेरिका से। तो जितना जितनी वहां सुविधा बढ़ी, जितनी जितनी अनुकूलता है और पैसा बढ़ा, साथ साथ अशांति बढ़ी है। क्यों? कि जीव का जो शांत स्वभाव है वो इसका पदभूत है, स्वपदभूत है, और जो इसका रहने का स्थान, लेने का स्थान नहीं है, वहां से वो लेने को जाता है तो शांति डिस्टर्ब हो जाती है, अशांति बढ़ जाती है। तो उसका साइंस ही आत्मा का ऐसा है, ये विज्ञान है इसका। तो अशांति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सुबह की कथा में आया कि नहीं आया? तृष्णा ये दुख का बीज भूत है। जितना जितना संयोग ज्यादा मिलता है तृष्णा बढ़ती जाती है, उतना उतना दुख आगे बढ़ने वाला है। वहां सिग्नल दिया है कि अभी तेरे संयोग बढ़ता है, तेरे साथ साथ तृष्णा बढ़ती है, मालूम पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो अभी समझ ले कि आगे दुख बढ़ने वाला है। अगर दुखी नहीं होना हो तो तुम तृष्णा को छोड़ो, पुण्य के फल में आकर्षित मत हो, यही उद्देश्य है वहां प्रवचन सार में। लेकिन लिंक तो सब जगह बैठती है इसके, हर जगह इसके लिंक बैठ जाते हैं। तो इधर ही कहते हैं कि तेरा स्थान ही नहीं, तेरा स्थान नहीं है, तुम दूसरे के स्थान पर कब्जा जमाने को जाएगा तो मार खाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई होने वाला नहीं है। ये हालत आत्मा की होती है, इसलिए ये जो पंक्ति बड़ी लंबी छोड़ी है विस्तार करेंगे कल थोड़ा। अच्छा सुने